Krishna Chaitanya Nayani Gaurabhakti Sri He Krishna Karuna Sindho Deena Bandho Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Mande-kutende-varam Jatran-jat-garo-sanvita-tatam-pattam-varasya-sriyat Vindaran-nanva-sinam-vadila-sat-dama-viramodaram Radha-skandali-sito-jalvayam Nyanyam-dham Aparatala-chai-chitta-sitama-ditam-madde Kripa-mai-tvam-saranam-prapanna-vinde-maste Charanam-gurade-gaura-chandra-jira-dhika-yai-tada-gayai Krishna-yai-krishna-bhakta-yai-tada-bhakta-yai Yankra-prajanta-mante-tama-peta-kritya Dvaipāyano-virahakātara-yājhāva Putriti-tanmaya-tayātara-bhokhinedo Tamsarva-bhūtari-dayam-munyā Tavai-vāsmi-tavai-vāsmi Nijivāmi-tvayāna Iti-vidhyāyā-bhetam-maya-mā-bhūtari
Both Ramana and
You said what to me?
We were putting it in Konami Vashura.
So we're going to put it. दीपावली का कहीं उल्लेख है भागवत इत्यादि में
देखा मैं मुक्त चरित में आज मुझे मैंने बताया था कि गोपियों ने राधा कुंड के तट पर दीपावली के दिन में प्रभु मुक्ता की माला गुथने लगी कि कृष्ण को पहनाने के लिए इसी समय में कृष्ण आग्रह कहने लगे कि हमें कुछ मुक्ता दे दो गायब के सिंह में हम पहनाएंगे माला तो गोपियाँ कुछ डाक फटका लगा दिया ललिता विशाखा आदि ने कृष्ण को तो ये समस्त लीलाएं उसमें दीप मालिका उस समय ही दिखाया गया
वेद में बतलाया गया ज्योति का
तमसो गोमा ज्योति
तमसो मा ज्योतिर्गमय
तमसो
मा ज्योति
ज्योति
अंधकार में मत जाओ, ज्योति गमय। अंधकार क्या है? अविद्या। माया का ये जो संसार है ये है अविद्या, ये है अंधकार। और भगवत भक्ति है प्रकाश, भगवान की सेवा ही प्रकाश है। आत्मज्ञान से आरंभ करते, आत्मज्ञान ये सब भक्ति के द्वारा ही है। इसलिए संसार से विपरीत प्रकाश की तरफ में चलो, ये वेदों में बतलाया गया। तो प्रकाश का ये स्वरूप हुआ ज्योति। इसलिए प्रारंभ काल से ही ये दीपावली मनाई जाती है। रामचंद्र जी के समय में रामचंद्र जी जब वहाँ से लौटे वन गमन से, तो अयोध्या में दीपावली मनी थी। कृष्णचंद्र जी के समय में, कृष्ण जब रायसूय यज्ञ के बाद में इंद्रप्रस्थ से यहाँ पर प्रवेश किया, यहाँ आए द्वारका में, तो दीप की मालाओं से पूरा नगर एकदम सजा दिया गया और कृष्ण का स्वागत किया गया उसके द्वारा। ये तो देखे जाते हैं।
और समुद्र मंथन के प्रसंग में आज लक्ष्मी जी के आविर्भाव।
अच्छा, समुद्र मंथन जब हुआ
इसलिए आज सब घरों
में लक्ष्मी जी आज उतरती हैं धरातल में, इसलिए उनके स्वागत में सर्वत्र ही ये मनाया जाता है दीपावली उत्सव, दीपोत्सव। हम लोग के तरफ में, बिहार की तरफ में हमने देखा आज के दिन में दीपावली मनेगी और रात में भोर 4 बजे 3 बजे महिलाएं सब उठ जाएंगी और दीप ले लेंगी प्रकाशित की और सूप बजाएंगी और सूप बजाते हुए दरिद्र को खा दे रही अंधकार को, दरिद्र को खा दे रही दरिद्रता। और लक्ष्मी जी आ रही हैं, लक्ष्मी जी आने से ही अपने आप दरिद्रता भरेगी। तो इसका ये स्थूल रूप है और सूक्ष्म है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी कैसे आती है? गुणों से, सब गुणों से लक्ष्मी आती है। सब गुणों में सबसे बड़ा गुण कितना क्या है? भगवत भक्ति। इससे बढ़कर के और कोई भी गुण नहीं है। इसलिए भगवत भक्ति यदि होगी तो अपने आप समस्त सद्गुण वहाँ पर रहेंगे और सब सद्गुण रह करके। यदि भगवत नहीं रहे, भगवत भक्ति नहीं रहेगी तो ये सब गुण दुर्गुण के रूप में बदल जाए। जस्यास्ति भक्ति भगवत्ता किंचना सर्वै गुणैः तत्र समासतेषुरा हरावभक्तस्य कुतो मधुना मनोरथेन असति धावतो भजति। वो गुण गुण नहीं है, वो गुण ही नहीं, असत की तरफ में, असत माने अंधकार की तरफ में हो सकते, संसार की तरफ में ले जाए। और भगवत भक्ति है तो जिनके वो कुछ दुर्गुण भी हैं वो सब गुण के रूप में चले जाए। इसे भगवत भक्ति यथार्थ में गुण है और सब गुण। अब इन्होंने बताया दीप मालिका के दिन, संस्कृत में इसको दीप मालिका कहते हैं। दीप मालिका के दिन में गोपियां कुछ हार बना रही थी। किस चीज का हार बना रही थी? मुक्त। मुक्त के ऊपर में पानी होता है, पानी माने लावण्य, भीतर से वो निकलता है, कांच कांच में नहीं होता। तो ये मुक्ता लेकर क्या बना रही थी? कृष्ण को पहनाई और उसी समय में कृष्ण आ गए। कृष्ण ने कहा हमें कुछ मुक्ता दे दो, अन्यथा ये जो बना रही है ये दे दो। पंजे क्या करेगा, क्या करोगे? उन्होंने सोचा कि शायद ये कहेंगे हम राधिका जी को पहनाएंगे, किंतु कृष्ण ने ये नहीं कहा। कृष्ण कहा कि हम अपनी गायों के सिंह में लगाएंगे और उनके खूर में बांधेंगे मणियों की माला। तो गोपियां भिदक गई, बिगड़ गई और उनको कहा कि तुम माला का तो एक मुक्ता भी तुमको नहीं देंगे। बहुत गिड़गिड़ाए, हाथ जोड़ा, कुछ भी किया, उन्होंने नहीं दिया। कृष्ण मन खराब करके वहां से लौट आए। ये बात है बरसाना की। तो इसके बाद में ये लोग कृष्ण लौट आए और वहीं पर एक कुंड है, हम लोग पिछली बार गए थे नंदगांव को, उसका कुंड का नाम क्या बताया, मुक्ता। तो मुक्ता कुंड में कृष्ण जी उपस्थित हुए और वहाँ पर हल चलाकर या कुदाल चला करके एक खेत तैयार किया और खेत तैयार करके उसमें कुछ बीज लगा दिए मुक्ता का और उसको सींचा और साथ ही साथ में उसमें पौधे हो गए और पौधे से फिर बड़े बड़े वृक्ष हो गए और वे दम भर गए मुक्ता से। इसने उसको लेकर के और मुक्ताओं की माला इतनी बनाई और इतनी किया और सब गायों को सजाया। उस समय ललिता जी विशाखा जी को पता लगा, वो आई और उसे कुछ मुक्ता मांगने लगी। तो कृष्ण कह दिया एक भी हम नहीं देंगे, एक भी नहीं दिया। वो फिर उन्होंने बहुत तरह से ये सब किया कि तो उन्होंने एक ये कथा। फिर अंत में कृष्ण छलबल से तो वो कृष्ण के पास ही आना था, वो गोपियों को मुक्ता की किस लिए जरूरत है या कृष्ण को किस लिए जरूरत है, किस लिए जरूरत है नहीं तो अच्छे से
उन्होंने भी खेती की, गोपियों ने भी खेती की पर नहीं हुआ।
तो गोपियों ने देखा जैसे ये तो कर रहे हैं तो हम भी करें, तो क्या हो गया, तो फिर क्या हुआ, कृष्ण के पास में गए तो कृष्ण जी से उलाहना दिया,
कृष्ण देने पर एक एक मुक्ता के लिए एक एक देना पड़ेगा।
बात ऐसी है कि कृष्ण ने जब मुक्ता बोया गोपियों ने दिया नहीं तो मैया से गला पकड़ करके बड़े मुश्किल से मुक्ता निकाल, तो मुक्ता निकाल करके ले करके खेती में बोया और गोपियों से कहा कि हमें कुछ दूध दे दो, हम मुक्ता सींचेंगे, मुक्ता बो रहे हैं हम उसमें डालेंगे।
उन्होंने कुछ भी नहीं दिया,
तो गोपियों ने दूध नहीं दिया। तो बोले अच्छा ठीक है, अब घर के जितना दूध था सब दूध ला करके सब उसी में डाले, ऐसे गड्ढे में डालते डालते तो कुछ दिन बाद ऐसे मुक्ता अब निकलने लगे और उसमें से जब पौधा निकल गया बड़ा बड़ा हुआ तब गोपियों ने कहा अरे उन लोग कृष्ण ने मुक्ता बोया और मुक्ता का पेड़ हो सकता है तो हम लोग नहीं बोए तो हम लोगों का नहीं होगा, चलो हम लोग जितने घर के मुक्ता थे सारे मुक्ताओं को लेकर के गोपियों ने अब खेती बनाया, खेती बनाया उसमें ऐसे ही कृष्ण के जैसे ही दूध डालने लगे तो दूध भी डाला। अब गोरस बेचने को नहीं मिलता है, सब गोपों ने देखा कि ये गोपियाँ सारे दूध जितना दूध है सब इसी में डालती और मुक्ता भी सब खेती में डाल दिया है। उन लोगों से कहा कि मुक्ता होगा, बहुत मुक्ता फलेगा, हम लाएंगे कोई चिंता नहीं। तो गोप लोग चुपचाप हैं। कुछ दिन बाद अब कृष्ण के दल वाले जितने मधुमंगल सुबल सुदामा ये लोग चिढ़ाने क्यों आते थे, रोज दिन चिढ़ाते, तो गोपियाँ भी ऐसे उनको ऐसे डांट फटका लगा करके भगा देती। तो इसके बाद कुछ दिन
कांटा हो गया,
कांटेदार वो बबूल का पेड़ निकला, जब बड़ा बड़ा हुआ तो उसमें बबूल के कांटेदार पेड़ के कंटों की भी यह देख करके गोपियों के सिर में हाथ पड़ गया, अब ये क्या हुआ, अब तो हमारा मुक्ता एक भी नहीं गया हुआ और सारा सब कुछ बिगड़ गया, अब किसी भी तरह से हमारा घर का मान बचाना पड़ेगा, कृष्ण से मुक्ता लेनी है। तो इसके लिए पहले नांदी मुखी को भेजा, तो इस नंदी मुखी फिर कुंदलता और तुंग विद्या आदि जितनी सखियाँ हैं सब एक एक करके भी जा उन लोगों ने जा करके कृष्ण से कहा देखो हमें कुछ मुक्ता दे दो। बोले बोले पैसा दो। तो इस पैसे के बदले अब मुक्ता देने की बात हुई तो उसमें कृष्ण ने अब दरदाम लगाया तो उस रस शास्त्र की बात आ गई।
मूल सबका तात्पर्य है भगवत भक्ति ही प्रकाश है और ये संसार वासना से जो संसार होता है यही अंधकार होता है। हम लोग का अंधकार से प्रकाश की तरफ नहीं चलता है। हम लोग बृहद भगवतामृत से महत संघ के संबंध में बतला रहे थे। सनातन गोस्वामी जी श्लोकों को श्रीमद् भागवत और दूसरे शास्त्रों से लेकर और ये बतला रहे हैं साधु संघ क्या चीज है। समस्त साधन और साध्यों के पुरुषार्थों के मस्तक पर ये है कर्म जो ज्ञान की तो बात ही क्या है, तपस्या और इस सब की बात ही क्या है, इनका कोई भी फल नहीं यदि भक्ति नहीं है तो। महत्संग नहीं है, महत्संग नहीं है तो भक्ति भी कर्म हो जाएगा। ये नाम इत्यादि भी उतना फलदायक नहीं रहेगा। भगवत भक्तों के माध्यम से ही नाम का प्रभाव जगत में आया है। नाम में इतनी शक्ति है, नाम को जगत में जब विस्तृत किया ये कौन किया है? तव कथामृतम तत्त जीवनम और लास्ट लाइन कपिलितम कल्मषापहम सर्वमंगलम श्रीमद् आततम भुवि गिलन्ति ते साधु संघ। साधु संघ सर्वशास्त्र कहे यदि साधु संघ नहीं है तो हम जो कुछ भी ये सब कर रहे हैं साधु संघ सब कुछ कर्म हो जाएगा। कौन कर्म है? कर्म है भक्ति न किसी काम में नहीं
है। कर्म में सिद्धि न है। कृष्ण को जुड़े रहो संसार में
संसार में नहीं होगा। हम लोग जो अवज्ञा करते हैं साधु संघ के प्रति उसका महान कुछ चुकाना पड़ेगा, मूल्य चुकाना पड़ेगा। अभी नहीं समझ रहे हैं इसकी जो अवहेला करेगा साधु संघ भगवत भक्ति तो मिलेगी नहीं, संसार में होगा क्या? इधर से वो संसार की जो बातें हैं उसमें भी अशांति दुख और ये सब हो जाएगा। कौन सी भी कर्म में सिद्धि तो होगी नहीं, सिद्धि रहे तो दूर भक्ति भी नहीं। इसलिए भक्ति का मूल क्या है? साधु संघ। कृष्ण भक्ति मूल है, जन्म मूल है साधु संघ। यह सब समय याद रखो। ऊपर से कोई भजन न भी करे यदि तात्विक और असत्य भक्तिमान यथार्थ में कोई साधु हो तो नास्तिक व्यक्ति भी साधु पुरुषों की तो बात किया, नास्तिक व्यक्ति भी कल ये शपथ लाए। इसलिए भक्ति निर्भर करती है साधु संत को। विशेष करके ब्रज भक्ति से युक्त यदि कोई ऐसे साधक महान हो इनको कहते हैं महत। महत माने किसको कहते हैं? और भी महत लोग हो सकते हैं किंतु हम लोगों का महत का तात्पर्य है रूप गोस्वामी की लाइन में जो है वो महत। गृहस्थ तैयारी से कोई मतलब नहीं, जो इनकी लाइन में है जो इस लाइन में रह करके गोपी भाव के लिए भजन करते हैं चैतन्य चैतामृत सुर गोस्वामी के ग्रंथ जितने हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के, भक्ति विनोद ठाकुर जी, हमारे गोसाइयों के जो ग्रंथ हैं, उन्होंने जो विवेचन किया है महत्व के लिए, वो महत्व प्राचीन काल के महत्व की अपेक्षा जो द्वादश महाजन हैं उनकी अपेक्षा इनका अधिक वैशिष्ट है पूर्व सनातन रघुनाथ जी का, इसलिए ये लोग महत्व। हम लोग सनक सनातन का संग नहीं चाहते, उनकी कृपा भी हम नहीं चाहते, वो लोग प्रसन्न रहे बस यही। हम लोग नारद जी को भी अब भूल जाते हैं, नारद जी को खड़ा कर दिया जाए और उनको स्वामी को खड़ा कर दिया जाए रघुनाथ दास को स्वामी, तो किसकी कृपा हम लोग चाहेंगे? नारद जी की कृपा चाहेंगे, नरुण को स्वामी और रघुनाथ को स्वामी लोगों की कृपा चाहेंगे। कृष्ण भी और महाप्रभु जी खड़े रहे तो किसको हम लोग पकड़ेंगे? महाप्रभु जी को पकड़ेंगे, उसमें दोनों आ जाएंगे, अपनी चरम अवस्था में राधा और चरम अवस्था में कृष्ण, दोनों मिलकर के। इसलिए ये सब विचार करना होगा, उनके अनुगत जो हैं वो सब महत्व हैं, हम लोग उन महत्वों की चरण धूलि बनने की चेष्टा करें। आप बतला रहे हैं प्रहलाद महाराज जी ने ऐसे कर, प्रहलाद महाराज जी ने भगवान भरत ही ना भरत जी का रहु बने एक तपसा में जाकर जाते नचे ज्ञान निवार ना गृहात बा न छंद दशा में जो जला के सूर्य बिना मर पार दो रहु बन। भरत जी बतला रहे कर तीसरे जन्म में पागल बने हुए और उस समय रघुगण को पार्टी से उतर गए, उनके चरणों में गिर गए, उनके समझ में नहीं आ रहा था ये कर्मों का फल कौन भोग करता है, उनको समझ में नहीं आ रहा। ये एक नीचे आग जला दी, ऊपर में बटलो ही रख ली या कोई कोई चीज रख लिया पानी का बटलो और उसमें पानी दे दिया और पानी दे करके वो बॉइलिंग हो लगा उसमें चावल दे दो, चावल दे दिया उसमें और वो गर्म होने लगा जल, पहले बर्तन गर्म हुआ कि जल गर्म हुआ? जल गर्म होने से आग बुझने से बर्तन गर्म होगा और बर्तन गर्म होने से क्या होगा?
पानी गर्म होगा
और पानी गर्म होने से तो वो कहते हैं आप कहते हैं कि आत्मा निर्विकार है, सारी कष्टों से उसका कोई भी संबंध नहीं है, वो इससे परे है, सुख दुख मान अपमान ये सबसे आत्मा परे है। मेरी ये समझ में नहीं आता कि ये सांसारिक दुख जो होता है किसको अनुभूति होती है? शरीर को, शरीर की अनुभूति है तो दुख सुख की ना किसको, ना कि मन को होता है, ना आत्मा को होता है, किसको होता है? यदि पानी में रखा हुआ पानी के द्वारा वो चावल सिद्ध हो गया तो वैसे ये शरीर के द्वारा जो कष्ट भोगे जाते हैं इसके द्वारा मन तप्त होता है और मन तप्त होने से क्या होगा? आत्मा को प्राप्त। ये सुख दुख तो आत्मा का भोग होना चाहिए और वो कहे कि नहीं, न आत्मा न पतला है न मोटा है, आत्मा ये जगत के दुख सुख से कुछ भी उसका संबंध नहीं, ये मेरे समझ में नहीं। आप लोगों को समझ में आता है ये सुख दुख का भोक्ता कौन है? ये शरीर का ये जो दुख हो रहा है बार बार दुनिया में जा रहा है ये आत्मा भोग रही है न कि शरीर और मन भोग रहा है। यदि आत्मा कोई से संबंध नहीं है तो फिर वो नरक में जाए चाहे स्वर्ग में जाए उसको क्या हर्ज है? आ रहा है समझ में कुछ? तो ये आत्मा ही तो अपने कर्मों का फल अविद्या का फल ये भोग रही है, ना कि शरीर मन भोग रहा है। तो वो लोग कहते हैं कि आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं, आप लोग इसको विचार करके कल हमको बताएं। ये आत्मा निर्विकार कहा गया, आत्मा कुछ भी भोग नहीं करती, मान अपमान सब इससे निराला है। और इधर में तो फिर जीव भगवान को भुला के उसका हर्ज क्या हुआ? यदि ये कुछ नहीं भोगता तो ये भोगता है कौन? जीव आत्मा भोग रहा है, न मन भोग रहा है, न शरीर भोग रहा है। यदि आत्मा का भोग ही नहीं है तो बहुत ही अच्छा है, तो कोई बात ही नहीं है, तो शरीर शरीर में भोग रहा है। आप लोग इसको विचार करके कल युक्ति के साथ में शास्त्र प्रमाण के अनुसार में प्रस्तुत करेंगे।
चूल्हे में आग जलाने का और बर्तन जलाने का और उसमें पानी डालने का ये मतलब नहीं केवल पानी गर्म करना है, चावल तो उबालने चावल सिद्ध करने के लिए ही तो पानी गर्म हो रहा है।
वो कहते हैं कि नहीं, शरीर का दुख सुख से आत्मा का कोई संबंध नहीं। तो ये उनके रोग और राजा को समझ में नहीं आया, इसी चीज को विश्लेषण करके उन्होंने बतलाया। अब इसको आप लोग कल विचार करके देख करके भागवत से हमको बताएं। तो उसी में ये कह रहे हैं रहुगण को, रहुगण ही तब तपसा में जाती। इसका पहला श्लोक है वासुदेवे मति जच्छति, वासुदेवे न कि क्या है, माने वासुदेव शब्द का वहां पर पिछले श्लोक में प्रयोग है। जिसकी मति विशुद्ध होती है, सप्तम विशुद्धम भगवत वासुदेव शब्दते, शुद्ध जिसकी मति है वो लोग वासुदेव जी का भजन कर सकते हैं, उसका ये तात्पर्य। फिर उसी को कह करके एक कहा अफर्मेटिव रूप में, अब इसको निगेटिव रूप में करें, पहले कहा अन्य रूप में, अब इसको व्यतिरेक रूप में समझा रहे। देखो भगवत भक्ति के द्वारा भगवान को अनायास ही पाया जा सकता है और भगवान के तरफ में मति जाएगी, किंतु हे रहुगण भक्त राजा भक्त बतला रहे उनको न कब कब सहन जाते इस भगवान को कृष्ण को वासुदेव को तपसा से नहीं जानता जाना जा सकता, तपस्या के द्वारा नहीं जाना जा सकता। न च इज्जया, वैदिक रीति से जो पूजन इत्यादि देवताओं के नाना प्रकार के होते हैं नहीं हो सकता, न वेदों के द्वारा उनको जाना जा सकता। इज्जया निर्वापनाद, निर्वापनाद मैंने क्या, सब संसार को छोड़ करके जो संन्यास ग्रहण किए, अन्नों का विभाजन करके सबको दे करके एकदम निश्चिंत हो गए हैं, संसार से कोई मतलब नहीं है, वो जो सन्यासी है सन्यास लेने से ही भगवान को नहीं जाना जाएगा। गृहात्मा, गृहात्मा ने गृह धर्म करने वाले और इसी को सर्वोत्तम मानने वाले वर्णाश्रम धर्म इत्यादि को, और उसके अंदर में जो गृहस्थ है गृहस्थ में रह करके भी गृहकर्म का अच्छी तरह से पालन करने से भी उनको नहीं जाएगा। न छंद दशा, छंद दशा मैंने वेदपाठ, वेदपाठ कौन करता है? ब्रह्मचारी लोग, अर्थात ब्रह्मचर्य केवल ऐसे ही रहने से, विवाह नहीं करने से ही, विवाह नहीं करेंगे और केवल वेद का पाठ कर रहे हैं ब्रह्मचारी बने हुए हैं इसे भी नहीं। न जलाग्नि सूर्य, न जल की उपासना करने से, जल का अधिष्ठात्री वरुण देवता, अग्नि अग्नि की आराधना करने से, ये हवन इत्यादि क्या चीज है?
अग्नि आराधना,
पहले जमाने में सत्य युग में त्रेता में भी लोग हवन करते थे, अग्नि को प्रतिदिन अग्नि की पूजा करते थे, अग्नि स्वाहा, सब जितने भी तापस होंगे वो जरूर अग्नि की सेवा करेंगे। तो अग्नि की सेवा से भी नहीं होगा, अथवा अग्नि में प्रवेश कर जाए यदि तो भी नहीं होगा, अथवा जल में प्रवेश करके तपस्या कर रहे हैं उसके भी द्वारा वरुण देवता की उसके जो अधिष्ठाती देवता है उसको भी अग्नि से। सूर्य मैंने सूर्य उसके इष्ट देव हैं उनकी उपासना करने से भी नहीं होगा, अथवा इस पृथ्वी लोक को पार करके ब्रह्मांड से जिनकी आत्मा निकलती है वो लोग सूर्य लोक के माध्यम से जाते हैं ऊपर, वो कौन सा एक पथ वाला
वैश्वानर गति से देवजान मार्ग में
ये सब जाते हैं, उसके द्वारा भी नहीं होगा, ये
ज्योतिष चक्र को भेद करके ब्रह्मलोक पहुंचते हैं
इसके द्वारा भी नहीं जाना जाएगा बिना महत्पाद योग से एकदम बिना महत्पुरुषों के संग से उनके रज को से अभिषिक्त जब तक नहीं हो जाएगा। अभिषिक्त होना मैंने क्या उनकी भावनाओं को उनके उपदेशों को ग्रहण करके वैसा ही आचरण करने का नाम है उससे चरण की धूलि से अभिषिक्त। ऐसा नहीं जैसे चरण धूलि नहीं दे रहे हैं तो क्या करो उनको लटक पटक करके गिरा दो आराम जोर जबरदस्ती करके धूलि ले करके और लगा लो, ऐसा होने से हो जाना है धूलि में स्नान कर लिया, नहीं है नहीं पैर दे रहे हैं तो उनका पैर पकड़ लो और अपने सिर पर जोर से रगड़ लो। ये स्थूल है फूल से नहीं, प्रसन्न होकर के हरि कथा के माध्यम से तुम्हारे जीवन को अभिषिक्त कर कृपा कर कृपा की कोर से एक देख ले बस। धूली लेने के तो बहुत से भी हो सकते हैं उपाय, जैसे कि वो अलाई पंडित ना क्या
कालिदास
ने उस तरह उनके उपदेशों को अच्छी तरह से पालन करना ही ये अभिषेक होना है, उनकी चरण धूलि होना है। जत्रो उत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयति ब्रह्म कथा विघात निशब्द्यमानम निशब्द्यमानो अनुदिनम मुमुक्षो मति सति गच्छति वासुदेव।
इस श्लोक का प्रथम है
प्रभु गणित तत्व जत्रो जत्रो उत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयति ब्रह्म कथा विघात निशब्द्यमानो अनुदिनम मुमुक्षो मति सनातन गोस्वामी कह रहे हैं ज्ञान विशुद्धम वसुदेव सत्यम। कृष्ण का स्वरूप क्या है चित स्वरूप है बदन्ति तत्व तत्व विदस्तत्व जज ज्ञानम अर्ध ज्ञान ही विशुद्ध तत्व है वही वसुदेव जी वासुदेव का ये स्वरूप है। तो ये पूर्व श्लोक में बतलाया गया कि ये विशुद्ध ज्ञान ही परमार्थिक एकमात्र सत्य है, तत्व भी जब लोगों ने ऋषियों ने इसी की उपलब्धि की है और उसी ज्ञान का अव्यय ज्ञान का नाम भगवत अथवा वासुदेव उसी को कहते हैं। यही वसुदेव नंदन रूप भगवत संग पर ब्रह्म कपादि के द्वारा इनको नहीं जाना सकता और जो ऊपर अभी बतलाया है तप कहने से स्वधर्म आचरण व मनुष्य मन एकाग्रता मन की एकाग्रता से भी इनको नहीं जाना जा सकता। बुद्ध देव जी ने कपिलवस्तु में जन्म लेकर और गया में जहां पर कि भगवत बुद्ध का स्थान था मन को एकाग्र किया बहुत दिनों तक, एकाग्र करते 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 एकाग्र तो हो गया कोई वस्तु नहीं किंतु उनको कुछ मिला नहीं, जब मिला नहीं तो देखा जैसे मन तो एकाग्र हमने कर लिया तो उन्होंने कहा जैसे जब कुछ नहीं आया तो उन्होंने कहा कि भगवान कुछ नहीं है वेदा नास्ती यदि होता तो एक भूमि एकात्र में जरूर आ जाता इतना, और उसके प्रति चिढ़ गए भगवान की सत्ता के प्रति। ये भागवत इत्यादि जो कुछ है ये सब गलत है, वेद भी नहीं है, ईश्वर भी है, नास्तिक बन गए। उन्होंने कहा कि ये शून्य है क्योंकि उन्होंने ध्यान में देखा शून्य, तो ये सब शून्य से निकला और शून्य में समा गया, बस यही सत्य है। अब शून्य में कैसे समाया जाए, अब इसके लिए उन्होंने कुछ बौद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, और एक क्या क्या है,
धर्मम शरणम,
धर्मम धर्मम शरणम गच्छामि, ये सब। वो धर्म क्या है, धर्म क्या है, वो हमारे जन्म के महावीर जी ने कहा अहिंसोपा अहिंसा परमो, उन्होंने भी वेदा नास्ति ईश्वरो नास्ति। ये क्यों ऐसा हुआ, ये इसलिए हुआ कि वैदिक हमारे ये वर्णाश्रम धर्म में कुछ लोग भगवत तत्व को भूल करके जाति के गौरव को ही अपना गौरव मानने लगे और सबको नीचा देखने लगे। वर्णाश्रम धर्म बनाया गया था भगवत भक्ति को लक्ष्य करके, आत्मज्ञान को लक्ष्य करके ये बनाया गया था। जी का निर्वाह के लिए किसी प्रकार से जिस भी काम से निर्वाह कर लो, भगवत भक्ति की आवश्यकता है, इसको दृष्टि रख करके क्रमशः ये वर्णाश्रम धर्म बनाया गया। लौकिक रूप में अर्थ के दृष्टि से और सांसारिक सुख के दृष्टि से ये नहीं बनाया गया, किंतु लोगों ने गलत समझा पीछे से। अब इसलिए भगवत संबंध नहीं है तभी हमन कर रहे हैं, भगवत संबंध नहीं है निराकार ध्यान करने लग गए, और धीरे 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 वो ऐसा हो गया कि हम ब्राह्मण हैं तो हम हमसे सबसे श्रेष्ठ हैं, किंतु ब्राह्मण का मूल था ब्रह्म में विचरण कर रहा, भगवत भक्ति ये सब रहित हो गया, दया इत्यादि निकल गई, सब लोगों को नीचा समझने लगे। इसलिए क्षत्रियों ने विद्रोह किया, इसके बाद में वैश्यों ने विद्रोह किया, आजकल कौन विद्रोह कर रहा है, आजकल शूद्र लोग उसी के प्रति मूल लक्ष्य से भ्रष्ट हो गए। विशेष करके अभी जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, आज से कितना दिन हुआ, 50 साल, तब से ब्रेड पिडली ये सब चीजें राजनीतिज्ञों ने इसको बढ़ाया। पहले कुछ कुछ था, सद्भाव था परस्पर में, ब्राह्मण में कुछ थे जो सबको अपना चाचा शूद्रों को भी कहते थे और उनमें संबंध था, किंतु इन लोगों ने राजनीति इतनी निम्न कोटि की जैसे कि परस्पर विच्छिन्न है। भगवत भक्ति तो हो गई दूर, आत्मज्ञान हो गया दूर, और वो करके क्या हुआ, एकदम सभी ब्राह्मण से लेकर के सात लोग, बहुत कुछ थोड़ा सा रह गया उस धारा में जो किसने व्यास नारद जी व्यास जी सुखदेव गोस्वामी और वैष्णव सब आए थे, उन लोगों ने इस चीज को विचार किया। शूद्र भी यदि भगवत भक्ति से युक्त है तो वही उसी को देना चाहिए, उसी को आदर करना चाहिए, और ब्राह्मण भी विगतगामी होकर के उस भक्ति धर्म से यदि च्युत हो गया तो वो ब्राह्मण नहीं है। ये पहले का विचार था, जहां तक जिस कुल में जिस जाति में भगवत भक्ति, विशेष करके कलयुग में भगवत भक्ति यदि है तो सब ठीक है, और भगवत भक्ति नहीं है तो आज कर्म से ब्राह्मण भी वही जूते का कारोबार कर रहे हैं, नीचे का काम कर रहे हैं, सभी लोग एकदम अब अर्थ प्रधान हो गए और वो भक्ति और ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान ये सब खत्म हो गए, तो इसीलिए उन लोगों ने विद्रोह किया। विद्रोह करने से जैन धर्म और बौद्ध धर्म, किंतु लोग कुछ भ्रष्ट हो गए, भगवत तत्व से तो संबंध नहीं था, उनमें कुछ था किंतु विकृत हो गया था, अब और भी नीचे रसा हो गया, कृष्ण के समय में और अधिक हो गया, परशुराम जी हुए ना, परशुराम में राज गंगा हुआ ना, ये क्या था, ये सभी विद्रोह था। तो परशुराम जी को रामचंद्र जी ने उनकी शक्ति खाई चली, इसका व्यवहार मत करो, और खींच करके क्या किया, सुशासन ला करके समस्त वर्ग और जितने थे उस भक्ति को प्रधान करके सबको एकदम
इसलिए राम राज्य। इसके बाद में रामचंद्र जी के बाद में फिर कुछ हुआ। ब्राह्मण लोग अपने को ब्राह्मण कहते हैं, युद्ध करते, लड़ाई करते, अर्थ प्रदान हो गया। यहाँ तक कि द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा ये ब्राह्मण थे ना, भगवत भक्ति से क्या संबंध रहा। यहाँ तक कि कृष्ण का विरोध होकर के इन्होंने युद्ध किया। उस समय में रामचंद्र जी के सब का पहले भगवत भक्ति का और ये संसारी कर्मों का कुछ अनुपात था, आधा आधी। इसलिए रामचंद्र जी ने दबा करके पूर्ण को ही सारा राम राज्य बनाया और सब उसमें कोई भी दुखी नहीं थे। सब वर्ण और आश्रम के लोग अपने अपने धर्मों का अर्थात भगवत भक्ति का पालन करें। अब कृष्ण के समय में क्या हो गया, 18 में से 17, 11 और 7 का अनुपात हो गया। दो श्लोक हो गए कितने, 11% और 7% कौन हो गए, 7% नहीं मिले, सातवां भाग 11 भगवान असुरों का, अर्थात ये सब बढ़ने लग गया। दानवों का भाव, भगवत भक्ति लुप्त होने लगी। अब केवल 7 भाग रहा और वो रह गए 11 भाग। कृष्ण ने क्या किया, 11 भाग को घटाया धर्म की स्थापना करने के लिए। ये लड़ाई किस लिए हुई, धन के लिए हुई न कि राज्य के लिए हुई, ये धर्म युद्ध था। किस लिए, कृष्ण ने सोचा भगवत भक्ति अब नष्ट होती चली जा रही और अर्थ चिंता और अर्थ की ये सब बातें और दानवी भाव अधिक बढ़ रहा है। इसलिए गीता में उन्होंने क्या उपदेश दिया, इसी पर देखिए। लड़ाई के लिए कहा उन्होंने, प्रारंभ से आत्मज्ञान दिया, ये दब रहा था। कैसे, दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, शकुनी, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य इत्यादि ऐसे सब लोग, सब समाज के लोग भगवत भक्ति विरोधी हो रहे हैं, राज्य के लिए वो लड़ रहे हैं। और कृष्ण किस लिए लड़ रहे हैं, या पांडव लोग क्यों, वो राज्य के लिए नहीं लड़ा, नहीं क्यों, अर्जुन ने कहा ये राज्य क्या, कितना होगा, किन लोग, मैंने पृथ्वी का राज्य,
तीन लोगों का राज्य,
अब तीन लोगों का राज्य सब कुछ मिल जाएगा, तभी मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं इनको छोड़कर के भिक्षा मांगना बहुत। अभी त्रय को राजस्व है तो किन महित होते, तो ठीक ही तो बात क्या, तीन लोगों का राज्य में मिल जाए ना, इसके लिए युद्ध नहीं था, इसलिए इनका लड़ना युद्ध के लिए नहीं था। तो कृष्ण ने कहा युद्ध राज्य के लिए मत करो, रुपया पैसा के लिए मत करो, तुम युद्ध धर्म की स्थापना के लिए। अजय धर्म कैसे, तो ये धर्म लुप्त हो जाएगा यदि महाभारत युद्ध, तुम लोग का विचार, यदि युद्ध नहीं करेगा तो क्या होगा, असुर अभी 11 भाग है और क्या होगा, करके 1% भी धर्म नहीं रहेगा। इसलिए धर्म में क्या, जज्ञाघात लोग अहम कर्म बंधनम तदर्थम कम कम थे समाचार शास्त्र शास्त्रावक और मन मना भव हो मधुभक्त हो अंत में का सर्वधर्म प्रत्यजमान एक अंश। इसलिए महाभारत युद्ध किया राज्य के लिए, इसलिए उन सबको खत्म करके उसकी प्रतिष्ठा की। प्रतिष्ठा करने के बाद में धीरे 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 उसको भूल गए धर्म को, और इसके बाद में मुसलमानी राज्य, मुसलमान लोग आए, इसके बाद में मुगल लोग आए, इसके बाद अंग्रेज लोग आए, हमारी रही सही चीजों को भी चपट कर दिया। किंतु उन लोगों ने जितना विनाश किया उससे कोटि गुण विनाश वर्तमान राजनीतिज्ञों ने और इन लोगों ने। अब वो धीरे धीरे हो गया, अब धर्म भिन्न राजनीति हो ऐसा कर, ये है अंधता। धीरे धीरे भगवत इन लोगों ने, लल्लू एक है ना बिहार के, वो कहते हैं अरे भैया ये जनऊ की क्या जरूरत है, बिना जनऊ के तो पेशाब हो जाता है। तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है, तो गधे तो चलते फिरते बिना जनेऊ के करते हैं, तो तुम गधा कैसा है, तुमको इतना ज्ञान नहीं, जब इसका नाम है ब्रह्म सूत्र, जीवन का लक्ष्य क्या है, गधे और घोड़े जैसा पेशाब करना ही जीवन का धर्म है, पेशाब करने के लिए तू आया है। मूर्ख लोग उसकी बातें कौन समझते हैं। अरे इसका नाम है ब्रह्म सूत्र, प्रतिज्ञा करते हैं 3 बार, हम ब्रह्म को जानेंगे, हम ब्रह्म स्वरूप हैं, इसके लिए तो ब्रह्म सूत्र है, इसको उठा उपवीत भगवान के निकट हम ये सब जाएंगे। इसके लिए प्रतिज्ञा के रूप में ब्रह्म सूत्र के रूप में एक चीज है, पेशाब करने के लिए तो गधे घोड़े तो उनसे अच्छा पेशाब कर लेंगे, चलते चलते करते हैं तो वो भी चलते चलते करें, मनुष्य नहीं गधे हैं सब, ये सब धर्म रही ये सब चीजें कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद में भगवान की के हाथ में ये है ना कंट्रोल है, ऐसा चलाएंगे अभी चल रहे हैं चल रहे हैं, ऐसा चलाएंगे सब जहां तहां सब हो गए तो रह जाएंगे। इसलिए ये धीरे 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 कलयुग में कुछ दिनों तक ऐसा चलेगा। वो तो महाप्रभु जी की ऐसी क्षमता और शक्ति है कि भगवत भक्ति का नाम का प्रचार किया जो विश्व में आज सर्वत्र नाम कुछ प्रचार, इसलिए कुछ टीका हुआ नहीं तो अब तक कली का प्रभाव देख लेते जो क्या होता है। इसलिए वो कह रहे हैं ये इन उपासनाओं के द्वारा ये पहले भी कुछ था, यही हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष ये सब भगवत भक्ति को दबा करके और इसको प्रचार करना चाहते थे, भगवान सिंहदेव ने उनको दमन करके और वहां पर कंट्रोल कर दिया, बीच में कंट्रोल होता गया, कृष्ण ने कुछ आराम ने कुछ कंट्रोल किया, फिर कृष्ण ने कंट्रोल किया, ऐसी शक्ति नहीं उनसे कंट्रोल नहीं, ऐसे कोई महापुरुष जब भी आए तब उनको कंट्रोल कर सकते। इस चीजों के द्वारा हमारी संस्कृति क्या है, हमको क्या रक्षा करनी है, मट्टी की रक्षा करना है ना संस्कृति की रक्षा करना है, संस्कृति क्या है, ये भगवत भक्ति ही हमारी मूल संस्कृति, इसको समझना चाहिए।